ओम शांति, ओम शांति। बाबा हम बच्चों को हमारी उन्नति सदा कैसे हो इसकी युक्तियां बताते हैं। दुनिया में हद की उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए है बेहद की उन्नति। बेहद की उन्नति अर्थात आंतरिक उन्नति। हद की उन्नति के लिए तो मनुष्य क्या नहीं करते हैं। दो एक दुकान होगा तो सोचेंगे दूसरा भी खोले, तीसरा भी खोले। एक बिजनेस होगी कहेंगे दूसरी भी बिजनेस करे, तीसरी भी करे। न जाने क्या क्या करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वार्थ भले करो, मना नहीं है। बाबा ये तो नहीं कहते घर बार छोड़ के यहाँ आ जाओ तो आपको शरीर निर्वार्थ, मेहनत तो करनी है, नौकरी धंधा आदि तो करना है, लेकिन बेहद की उन्नति पर भी ध्यान देना है। जिसको बाबा कहते हैं आध्यात्मिक सशक्तिकरण, और इस साल का विषय ही यह है आंतरिक सशक्तिकरण। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, बाहर की चाहे कितनी भी उन्नति करेंगे, नाम मान शान मर्तबा महिमा धन संपत्ति वैभव सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन फिर बाबा कहते हैं कितनी समस्याएं आती है। और फिर ले भी क्या जाएंगे, कुछ भी नहीं ले जाएंगे, सब यही रह जाना है। इसलिए आंतरिक उन्नति पर पूरा ध्यान दो, क्योंकि वो समस्याएं तो कम नहीं होने वाली है, वो तो बढ़ेगी, परंतु आंतरिक शक्ति होगी तो उनका हम सहज सामना कर सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो उन्नति कैसे होगी, ईश्वरीय पढ़ाई से। वो उन्नति कैसे होगी, बाबा की याद से। वो उन्नति कैसी होगी, कैसे होगी, धारणा से। और उसमें भी बाबा ने आज सबसे बड़ी धारणा बताई है भाई भाई की दृष्टि। इस भाई भाई की दृष्टि से अन्य सब धारणाएं अपने आप आ जाएगी। और फिर बाबा के इसकी सेवा तो करनी है, उससे भी आंतरिक उन्नति होती है, दुआएं कमाते हैं, बहुत कुछ है। तो यही आत्मा के साथ जाएगी बातें, बाकी वो तो चाहे कितना भी करे वो तो सब बाबा कहते मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो विशेष ध्यान हमको आंतरिक या आध्यात्मिक उन्नति पर देना है, अपनी आत्मा को सशक्त बनाना है। तो आज की मुरली में बहुत सारी बातें इस पर है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 26/4/2024 है। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। आंतरिक उन्नति को बेहद की उन्नति कहेंगे। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे, मुरली पर अटेंशन देंगे, हाँ मुरली को जीवन में लाएंगे, जो बाबा हमें श्रीमत देते उसका पालन करेंगे, तो अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे जितना, उतनी उन्नति होगी। प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है, जिस पर ही जिसमें ही बाबा कहते हैं बच्चे फेल हो जाते हैं। कई सब्जेक्ट्स बाबा बताते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट जिसमें बच्चे अधिकतर फेल हो जाते हैं, इसलिए प्रश्न है इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है जो तुम इस बेहद की पढ़ाई में पढ़ रहे हो। उत्तर है, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना, क्योंकि शारीरिक आकर्षण इतना जल्दी हो जाता है देह अभिमान के कारण, जो हम आत्मा भाई भाई है ये दृष्टि कई बार भूल जाते हैं। तो इसलिए भाई भाई की दृष्टि पक्की करना इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा न दे। आंखें कैसे धोखा देती है उसमें भी बहुत बड़ा क्लास हो सकता है। तो जरा भी आंखें धोखा न दे, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छींची संकल्प न चले। ये है मेहनत। कौन सी मेहनत? बुद्धि में जरा भी विकारी छींची संकल्प न चले, ये है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हरेक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तेरा मेरा तेरा मेरा ये सब हदें लाता है ना। तो इतना समय तुम हद में थे, अब तुम बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है, बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। जिस पढ़ाई से बेहद की बादशाही मिले, इससे कोई और बड़ी पढ़ाई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, बाबा मना नहीं करते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। आत्मा की उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं ना। वो हद की उन्नति में समझो नौकरी तो मिल गई, लेकिन अब उसमें पदोन्नति चाहिए, तो पदोन्नति के लिए ये परीक्षा देनी पड़ेगी, तो परीक्षा देने लिए पढ़ना तो पड़ता है ना। तो हद की उन्नति के लिए तो कितनी मेहनत करते हैं ना। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहां है हद की उन्नति, यहाँ बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बाबा मना नहीं करते। बाबा एक छोटे मकान जिसमें रहता हूँ वो छोटा मकान है बाबा, मैं घर में बच्चे हैं तो बड़ा मकान लो। बाबा कहेंगे भले लो, मना थोड़ी बाबा करते हैं। तो इसीलिए हद की जो की उन्नति है उसमें बाबा मना तो नहीं करते, परंतु बेहद की उन्नति का भी ख्याल जरूर रखो। बाप कहते हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे, उतना उतना क्या होगा, उतना हद की कमाई की बातें भूलती जाएगी। अपने आप उसमें भी सफलता मिलेगी, पर उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। एक होता है पीछे पड़ना, ये चाहिए चाहिए चाहिए। दूसरा होता है पीछे नहीं पड़ना। आंतरिक उन्नति होगी, वो हद की भी उन्नति होगी जरूर। तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएगी, सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। है ना, अभी बहुत ढूंढ रहे भगवान को, हे भगवान हाँ इतना दुख है दुनिया में तो भगवान को तो ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए भक्ति भी फुल फोर्स में है, भक्ति की भी कोई कमी नहीं है, ऐसे नहीं कि कमी हो गई है, बहुत फुल फोर्स में। तो बाबा कहेंगे भगवान को भी ढूंढेंगे, विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वो स्टूडेंट्स रहते हैं जो पढ़ते हैं, अब बाबा भेंट कर रहे हैं ना, हॉस्टल्स में बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं और पढ़ते हैं, माँ बाप समझते हैं हॉस्टल में पढ़ेगा बच्चा तो उसकी उन्नति होगी, क्योंकि और कोई आकर्षण नहीं है, पढ़ना ही है और पढ़ाई करनी है। हॉस्टल में वो स्टूडेंट रहते जो पढ़ते हैं, परंतु ये हॉस्टल तो न्यारी है। क्या न्यारी है, क्यों न्यारी है, कैसे न्यारी है, बाबा ने बताया ये हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे भी रहते हैं, क्या है, वैसे हॉस्टल में रहना माना स्टूडेंट बन के ही रहना, ऐसे नहीं नौकरी करने वाले हॉस्टल में रहेंगे, केवल पढ़ाई पढ़ने वाले ही हॉस्टल में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इस हॉस्टल में तो कई ऐसे भी रहते हैं जो शुरू से चले आए हैं वो रह गए हैं, है ना, शुरू में बाबा के यज्ञ में दादियों को तो सबको बाहर भेजा, सेंटर खुलते गए और बहनों को बाहर भेजा, लेकिन कई ऐसी थी जो बुजुर्ग थी, चल नहीं पाती थी, बीमार थी, तो उनको बाबा कैसे भेजता, तो वो तो मधुबन में ही रहती थी। हाँ मिसाल देते हैं ना, दो बुजुर्ग माताएं थी मधुबन में, एक को दिखाई नहीं देता था और एक को सुनाई नहीं देता था, और दोनों साथ में रहती थी, एक ही कमरे में रहती थी, तो जिसको दिखाई नहीं देता था वह दूसरे को सुनाई देता था, तो वो जिसको सुनाई देता था वो जिसको दिखाई नहीं देता उसको मदद करती थी, तो परंतु जिसको दिखाई नहीं देता था तो जरूर वो करेंगे, लेकिन फिर दूसरा भी था, फिर वो एक दो को मदद करते रहते थे और साथ में रहते थे। तो एक बार किसी ने बाबा को कहा, बाबा मैं सेंटर खोल रही हूँ, बाबा मुझे हैंड्स भेजो। बाबा ने कहा ये दो हैंड्स है, तुमको चाहिए तो ले जाओ। ये दो हैंड्स है, अभी वो क्या करेंगे, वो हैंड्स किस काम के, तो जो क्योंकि वो दोनों ही एक दो के ऊपर आधारित है तो वो मदद सेवा क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो जो शुरू से चले आए हैं वो रह गए हैं, ऐसे भी आ गए, बहुत आ गए, वैरायटी आ गए, ऐसे नहीं कि सब अच्छे आए, सबको ऐसे सर्विसेबल आए जो सबको बाबा ने भेजा, ऐसे भी आए जो अच्छे आए, वो ऐसे वो भी आए, छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए। अरे इतने हद तक जो गर्भवती माताएं थी, गर्भवती वो भी आ गई बाबा के पास, और यहीं वो पैदा हुई थी। हमारा एक उदाहरण है मोहिनी बहन, जो बॉम्बे की कोलाबा सेंटर की मोहिनी बहन, तो उनकी तो माँ गर्भ से थी परंतु बहुत बंधन था उनको पवित्रता के कारण, तो वो आ गई दादी जी की, दादी प्रकाशमणि जी की बड़ी बहन थी, तो वो आ गई और तो फिर यज्ञ में उनको बच्ची पैदा हुई, तो उसको तो ये नशा रहता था मैं तो यज्ञ में पैदा हुई। तो देखो तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे, हॉस्टल भी बाबा ने बनाया तो जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे तो वो भी जो बड़े थे वो छोटों को संभालते थे। फिर उनमें कितने चले गए, बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं, प्यारा लगता है ना फूल, कितने सुंदर सुंदर, कोई छोटे भी कोई बड़े भी है, कोई कैसे पक्षी भी वैरायटी है, तो पक्षी भी देखो कैसे टिकलू टिकलू करते हैं, कुछ अपना म्यूजिक बोलते हैं। ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसी है, हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, देवताएं सभ्यता वाले हैं तो उनकी महिमा गाते थे, कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, भक्ति में भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं फील तो करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, महसूस करते हाँ दुनिया का सारा ज्ञान है पर खुद का ज्ञान है ही नहीं। चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, क्या हो, बड़ा पद वाला हो, अरबपति हो, पर मैं कौन हूँ ये पता ही नहीं, ईश्वर कौन है ये पता ही नहीं। तो बाबा कहते वो फील भी करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हम, फिर वो किस काम का, जो सारी दुनिया की बातें तो पता है लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते वो किस काम का, तुम भी कुछ काम के नहीं थे, हम भी कुछ काम के नहीं थे, खुद का तो पता ही नहीं था मैं आत्मा हूं। अब तुम समझते हो ये बाप की कमाल है, जो बाबा ने इतना ज्ञान दिया ये बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल न सके। सत्युग में कोई विघ्न नहीं डाल सकेगा हमारी राजाई में। क्या से क्या बनते हैं, हाँ सोचो तो सही, बाबा कहते क्या से क्या बनते हो। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। बल दुनिया में कितनी ग्लानी हंगामे आदि होते हैं, हाँ होते हैं दुनिया में, क्या क्या न्यूज मिलती रहती है, अखबारों में क्या क्या पढ़ता रहता है, लेकिन बाबा कहते हैं हाँ ये कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है, कल पहले भी ऐसा ही हुआ था। हाँ इतना जो कुछ दुनिया में लड़ाइयाँ झगड़े जो कुछ चलते हैं, मारा मारी मरते क्या नहीं होता, तूफान आंधी सब कुछ, बाबा कहते हैं ये कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है ना शास्त्र में, गीता में, ये ज्ञान मैंने पहले भी सुनाया है, अब भी सुनाता हूँ, फिर प्राय लोप हो जाता है। तो शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है, ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र है वो फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा, ये समझ लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। ये तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। ये हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने, हाँ पर होशियार बनने का मतलब ये नहीं उसको गिरा करके वो होशियार बने, किसको गिरा करके होशियार बनना, ये तो कोई होशियारी नहीं हुई ना। तो ये हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने, आप अपनी तरह से होशियार बनो, मना थोड़ी है। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। हाँ कहते ना, बताते हैं कि भाई एक लकीर है, अब उस लकीर को हमें छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी ही उस लकीर को काटेंगे, लेकिन हम बड़ी लकीर खींचेंगे उनसे बड़ी, तो वो जो पहले वाली लकीर है वो अपने आप छोटी दिखाई देगी। तो छोटी लकीर को काटना नहीं है, वो अपनी तरह से जो चल रहे चलने दे, लेकिन हम अपनी उन्नति करने लिए अपना पुरुषार्थ करें। तो बाबा कहते हैं मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं, अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ, साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों बाप है हमको, दोनों इकट्ठे अव्यक्त बाप दादा आते कहेंगे ना, बाप दादा आए हैं तो दोनों बाप साथ में आते, तो दोनों इकट्ठे हैं, दोनों मिलकर कहते हैं, दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, और तो कोई जानते ही नहीं, पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन, भगवान क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं भगवान हमको? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वो है हठ योगी, वे भी है ऋषि। वो हठ के हठ योगी ऋषि है परंतु हद के हैं। वो कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, अब ये कोई अच्छा काम किया है क्या? घर बार छोड़ दिया और सन्यासी बन गई मानो, तो बाबा कहते अच्छा काम किया क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो, अभी हम जो हमारी बहनों ने या यज्ञ में शुरू में घर बार क्यों छोड़ा, क्यों भागे? ऐसे ही नहीं बस वैराग आ गया और भागे, लेकिन विकार के लिए मार पड़ती थी इसीलिए भागे, नहीं तो क्यों भागते? घर में तो सब सुखी थे। तो बाबा कहते हैं तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? अब वो सन्यासी जो बने उनको क्या तंगी हुई घर में, जो परिवार छोड़ दिया और जाके सन्यासी बन गए, उनको क्या तंगी हुई? तुमको तो मार पड़ी तब तुम भागी हो। एक एक से पूछो, यज्ञ में जो भी है बाबा कहते एक एक से पूछो, कुमारियों ने स्त्रियों ने कितनी मार खाई है, बहुत मार खाई, अभी तक भी मारे कई खाती है बेचारी, समझती मैं बाबा की सेवा करूं, करने नहीं देते हैं, आने नहीं देते हैं। तो एक एक से पूछो कुमारियों ने स्त्रियों ने कितनी मार खाई है तभी चली आई, शुरू में कितने आए, यहां मिलता था ज्ञान अमृत तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। ये बाबा ने युक्ति रची थी, कल कोई नहीं कहे कि मेरे बेटी का अपहरण कर लिया या मेरे बेटी को उठा लिया अपने पास रखा, का घर वालों से चिट्ठी लेकर आओ कि हम ज्ञान अमृत पीने के लिए ओम राधे के पास जाते हैं। बाबा के पास जाते ये नहीं कि ये पुरुष और वो स्त्रियां, तो स्त्रियां पुरुष के पास क्यों जाएगी, तो ममा को आगे रखा, हम ओम राधे के पास जाते हैं किस लिए? ज्ञान अमृत पीने के लिए। तो प्रकाशमणि दादी भी ऐसे ही आई थी, बाबा ने उनको कहा कि आप यहाँ टीचर बनो लेकिन पहले अपने घर से छुट्टी लिया, क्योंकि टीचर बाबा कहते थे वो बने जो अपना जीवन बाबा को समर्पित करे, नौकरी धंधा नौकरी के हिसाब से, तनख्वाह लेने के हिसाब से नहीं, बस समर्पित होने के लिए। तो अपने पिता से पूछो कि हमको चिट्ठी लिख के देगा कि हम अपनी बेटी को ज्ञान अमृत पीने के लिए हम ओम राधे के पास जाएंगे, तो वो लिख के दे दिया, क्योंकि पिता जानता था कि मेरी बेटी तो मीराबाई बनेगी, हाँ शादी वादी करने वाली नहीं है और अपना जीवन पवित्र बनाएगी, तो सहज लिख दिया, तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है, बंद तब होगा, कब बंद होगा? अभी तक चल रहा है कईयों का, हाँ यहाँ कई कुमारियां बैठी है, कई टीचर्स बैठी है जिन्होंने घर में मारे खाई है, हाथ उठाओ भाई, किसी ने नहीं खाई है? अच्छा एक है, हाँ मारे खाई किसी ने, बस अच्छा दो, अभी हाथ तीसरा अभी हाथ उठा रही है, मारे खाई, हमने भी मार खाई है पता है, हमने भी मार खाई थी। और जब मैं तो छिप छिप के जाती थी, तो जब मुझे देख लिया मेरे भाई ने, कजिन रहा, तो उसने देख लिया, और जैसे मैं वापस आई तो एकदम इतना जोर से मारा, और उसी दिन बाबा की मुरली में था कि जो पवित्र कन्याओं पर हाथ चलाता है वो बड़ा पापी है, बाबा ने मुरली में कहा था। तो जैसे उसने मुझ पर हाथ चलाया मैंने कहते चल पापी कहीं का इतना जोर से उसको कहा चल पापी कहीं का, मुझ पर हाथ चलाया है पवित्र कुमारी पर, अरे वो तो इतना घबरा गया जो बात ही, उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाया तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बंद तब होगा, कब होगा ये हंगामा? जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा। भाइयों ने तो कभी मार नहीं खाई ना, खाई क्या मार, कोई भाइयों ने भी मार खाई हाथ उठाओ भाई, तो देखो हाथ उठा रहे हैं, मार खाई, स्त्री से मार खाई, पति किससे मार खाई, अपनी पत्नी से, कई बार है सुपनखा पूतना जैसी होगी ना, तो वो तो पति को भी मारेगी। तो बाबा कहते हैं बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा, फिर वहां कोई किसी को मारेगा नहीं। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं, हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं। हाँ, हद का बाप हद की प्रारब्ध क्या देते हैं? वो भी सिर्फ बच्चे को ही वर्षा देता है, हाँ बेटी को नहीं, बच्चे बेटे को, पत्नी को भी कुछ नहीं, बस सब बेटे को। अब बेटे क्या करेंगे, माँ को भी निकाल देते हैं। तो वो भी सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है। बेटी को तो डावरी दे दिया, चलो अपने ससुराल जाओ आप, हमारा पल्ला पूरा हुआ, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, पर बेटे तो पूरे हकदार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है यहाँ, तो उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है। सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं, स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा नहीं देते। ऐसे है बिचारी माताएं, पति ने शरीर छोड़ा तो माताएं हमारी, हाँ विधवा बन गई तो पति का सहारा खत्म हो गया, तो कोई सहारा नहीं देता। इसीलिए आजकल थोड़ा पति जो है समझदार है, पत्नी के नाम पर रखते, गवर्नमेंट तो बहुत समझदार है, गवर्नमेंट खास स्त्रियों के लिए महिलाओं के लिए कुछ न कुछ करती है, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं, बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है, मोह है ना, इसीलिए उनको ही देते हैं सब। ये बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों को, सभी बच्चा बच्चे माना आत्माएं, आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं। इतना बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेते फिर भी पढ़ते नहीं, पूरी पढ़ाई पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती है, हाँ बा किसी ने लिखा होगा बाबा को, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख करके भी दिया है, निश्चय पत्र अपने खून से लिख करके दिया है, अब नहीं आता है। अब निश्चय पत्र खून से लिख के दिया और अभी नहीं आता है, ब्लड से भी लिखते हैं। हाँ बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। तो बाप ने समझाया है ये सब ड्रामा है, ड्रामा, हाँ ड्रामा देखते चलो। कोई आश्चर्य को अच्छी रीति समझना है, नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। आते ना आर्ग्यू करते हैं और फिर भी आते रहते हैं, तो मुरली सुनते रहते हैं। बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आ रहा है मुरली सुन रहा है, आगे चल के अपने आप समझता जाएगा। तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे, अगर सुनते ही रहेंगे तो, अब सुनना छोड़ देंगे तो फिर कहाँ समझते जाएंगे, छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ न सके, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया स्थापन होती है। तो बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, कौन सा गीत है, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन न सके, आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा अधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। लो भाई सब है, सारी दुनिया है मतलब के साथी। वहां तो ऐसे नहीं होगा, सत्युग में थोड़ी मतलब के साथी होंगे, धनवान है तो साथी बनेंगे, अब वो निर्धन बेचारा हो गया तो सब साथ भी छोड़ देंगे, तो मतलब का साथी हुए ना। तो बाबा कहते वहां ऐसे कोई नहीं होगा। हाँ सब है मतलब के साथी, वहां तो ऐसे नहीं होगा। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना, इनको अच्छी रीति संभालना, बाप बच्चे को देता है कहेंगे अच्छी रीति संभालना। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, इतना धन माल देते हैं, तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो तो जरूर पावन बनकर विश्व का मालिक बनाऊंगा ना, पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। हाँ, पावन दुनिया में ले चलो तो घर जाना है तो भी पावन तो बनना पड़ेगा ना, नया राज्य लेना है पावन दुनिया का मालिक बनना है तो भी पावन तो बनना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहे तुमको तुमको तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरांदेशी बुद्धि हो गए हो, यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाएं, क्यों ना पाएं ऊंच पद, कम क्यों पाएं। राजधानी स्थापन होती है उसमें भी तो मर्तबे होंगे ना, दास दासियां तो ढेर होंगे, ढेर दास दासियां होंगे, वो भी बहुत सुख पाते हैं। हाँ, दास दासियां भी कोई कम सुख नहीं पाते हैं, साथ में महलों में रहेंगे, बाहर थोड़ी रहेंगे, उनको भी तो वो महल में कोई हिस्सा देंगे ना जहां पर वो दास दासियां रहेंगे, साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुख हो, कितना सुखी होंगे, दास दासियां भी कम सुखी नहीं होंगी, सिर्फ नाम है दास दासी पर है वो भी सुखी। जो राजा रानी खाते हैं वही दास दासियां भी खाते हैं, प्रजा को तो नहीं मिलता है। अब महल के अंदर जो बनेगा वो दास दासियां भी तो खाएंगी ना, राजा खाएगा तो, पर प्रजा को थोड़ी मिलेगा, प्रजा को फिर अपना करना पड़ता है, प्रजा को तो नहीं मिलता, दास दासियों का भी बहुत। दास दासियां तो यहां भी राजाओं के पास बहुत होते हैं। हम अभी गए थे, कहां गए थे, ये बीकानेर का, बीकानेर पैलेस है ना, तो वहां गए थे तो वहां वो मैनेजर बता रहा था कि जब राजा यहाँ आता था बीकानेर का राजा तो 500 दास दासियों को लेकर आता था, 500, और अपनी गाय भी साथ पिलाता था, एक ही गाय का दूध वो पीता था, ऐसे नहीं कोई भी गाय का, तो वो गाय भी साथ में ले आता था क्योंकि वही टेस्ट उसको चाहिए होती। तो बहुत बड़ा है बीकानेर पैलेस, वहां भी तो होटल है लेकिन उस समय राजा रहते थे वहां। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो दास दासियां तो यहां भी राजाओं के पास होती है, प्रिंसेस की जब सभा लगती है, प्रिंसेस यानी राजकुमारों की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए होते हैं, दरबार लगती है, महाराजा बुलाता है राजाओं को, क्योंकि छोटे छोटे रियासतें भी तो होंगी, उनके राजाएं होंगे तो उनको बुलाते थे। तो फिर बाबा कहते हैं हाँ, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए, वो राजकुमार राजा वो भी कोई कम नहीं, ताज आदि सहित होते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीय सभा लगती है। बाबा को तो अनुभव था ना, क्योंकि बाबा को बुलाते थे, महलों में बुलाते थे, और कई बार बाबा ने बताया एक बार कि मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वो राजा ने वो सभा शुरू नहीं की जब तक मैं नहीं पहुंचा, मैं पहुंचा भले सब बैठे थे लेकिन मुझे थोड़ा विलंब हुआ, परंतु मैं जब पहुंचा तब सभा शुरू की, इतना रिस्पेक्ट बाबा के लिए था। तो बाबा कहे ताज आदि सहित होते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीय सभा लगती है, उसमें रानियां नहीं बैठती है, जब राजा दरबार बुलाता है अपने, जो भी महाराजा बुलाता है राजाओं के लिए, तो उसमें रानियां नहीं बैठती है, वो पर्दे में रहती है, ये सत्यु की बात नहीं है, ये कलयुग की बात है, राजाएं बैठते थे तो वो पर्दे में होती थी तो पर्दे नशीन होती थी। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, उनको तुम प्राण दाता भी कहते हो। भगवान को क्या कहते हैं? प्राण दाता। प्राण दाता भी कहते हो, जीव दान देने वाला, नया जीवन देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला। कलयुग में तो देखो छोटी आई होती है तो एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, अभी वो छोड़ा, तीसरा लिया, तो घड़ी घड़ी जैसे शरीर छोड़ा। पर सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, तो घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला है। वहां मरने की चिंता नहीं होती है, मरने की चिंता नहीं होती है। यहां कितनी चिंता रहती है, थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहां मर न जाए। वहां डर की बात ही नहीं है। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। कौन पढ़ा रहा है मुझे, वो याद करो तो याद की यात्रा हुई। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, कर्म तो छोड़ो विकारी संकल्प भी ना आए। वो तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छीछी हो जाते हैं, बहन भाई की भी दृष्टि जा सकती है। सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आंखें हैं, इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है। पहले बाबा कहते थे भाई बहन समझो, फिर देखा उसमें भी फेल हो गए तो भाई भाई, फिर ये दूसरी युक्ति निकाली। अपने को भाई भाई समझो, बड़ी मेहनत है। सब्जेक्ट्स होती है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, ये पढ़ाई है, इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट है। तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। इस ऊंची पढ़ाई की ये मेन सब्जेक्ट है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो, तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु हर बार बाबा को परंतु कहना पड़ता है, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं, ट्रेटर बन पड़ते हैं। बाबा को छोड़कर फिर बाबा की ग्लानी करने लगते तो ट्रेटर हो गए ना, तो ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं और डाइवोर्स भी दे देते हैं। बच्चा है तो फारकती देते हैं और सजनी कहलाते हैं तो डाइवोर्स देते हैं। तो बाबा कहते हैं डाइवोर्स भी देते हैं, फारकती भी देते हैं। फारवती तो, फारकती तो बच्चा देता है, फारकती बच्चे और बाप का होता है। बच्चा बाप को छोड़ के चला गया, मानो बस संबंध खत्म, तो जैसे बच्चे ने बाप को फारकती दे दिया। और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है, डाइवोर्स दे दिया, तो इसीलिए तो स्त्री पति के बीच में डाइवोर्स। तो बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं, अपने को सजनी बाबा की समझते हैं पर सजनी भी होकर भी फिर डाइवोर्स दे देती है और बच्चा समझ करके भी फिर फारकती दे देता है। तो बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं, फारकती भी मिलती है तो डाइवोर्स भी मिलता है। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती है। भगवान को डाइवोर्स दिया, साजन को छोड़ दिया और जाकर रावण की बन गई। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है, गायन है गज को ग्रहाने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। बाबा से बेअदबी, बेअदबी माना अदब माना रिस्पेक्ट, तो बेअदबी माना डिसरिस्पेक्ट, बाबा को छोड़ दिया तो जैसे रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई ना बाबा के प्रति, तभी तो छोड़ा। तो बाबा से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। जिस रिस्पेक्ट बाबा को करते हैं, सम्मान बाबा का नहीं रखते, तो माया कच्चा खा जाती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, हाँ बाबा ने अच्छा कहा। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को कितना सुनाए, कितना सुनाऊं, कितना सुनाते हैं बाबा। तो मुख्य बात है अलफ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अलफ को याद करो। हाँ बाबा कराची में थे ना, तो हैदराबाद सिंध में वहां चारों और मुसलमान ही थे, तो बाबा कहते हैं वो कैसे कहते थे अलफ, सवेरे उठ अलफ को याद करो। ये वेला सोने की नहीं है, वो भी कहते थे। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं। बाबा की याद के सिवा और कोई उपाय नहीं विकर्म विनाश होने का। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही है सुधार कर साथ ले जाने, याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे। तो देखो बाबा कितना वफादार अपनी सजनियों से, और सजनी बेवफा बन जाती है और साजन को छोड़कर मां रावण का बन जाती है। देखो तो याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। हाँ, क्या जमा होता जाएगा? याद की यात्रा से सतो प्रधान होते ही जमा होता जाएगा। तो बाप कहते हैं अपना चौपड़ा रखो, कितना याद करते हो, कितनी सर्विस करते हो। हाँ, चौपड़ा रखो, हिसाब रखो। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, ये घाटा क्यों हुआ, हमको प्रॉफिट होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, धंधे में घाटा क्यों हुआ। घाटा नहीं डालना चाहिए आपको, अपने आप को भी घाटा मत डालो, घाटा नहीं डालना चाहिए। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता, अभी घाटा डाला, कैसे घाटा पड़ता है, कोई गलती की, मन खाता है, दुखी हो गए, कोई ऐसा गलत काम कर दिया तो स्थिति नीचे आ गई, वरना घाटा खाया। तो बाबा कहते हैं घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता, क्योंकि हर कल्प में फिर वैसा ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, जैसे बाप वफादार हैं, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना है। वरदान, सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। हल्के होंगे तो नैनों में समा सकेंगे ना। सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी बन भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वो और किसी युग में नहीं मिल सकती। खुशियों की खान मिलती है संगम पर। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है वर्षा, इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती है, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। नैनों पर क्या बैठता है पता है ना, कई वो है ना तिनका होता है ना तिनका, तो अगर नैनों के ऊपर रखा तो वो ठहर जाता है, अब और कुछ भी रखेंगे तो निकल आएगा ना, पर तिनका रहता है, तो इसलिए तिनका माना बिल्कुल सूक्ष्म। तो इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है, बाबा से स्नेह की निशानी क्या है, सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। स्लोगन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज 26 तारीख है, आज का अव्यक्त इशारा। संस्कार तो भिन्न भिन्न होते ही है, हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे भी, ऐसे नहीं मेरे जैसे संस्कार इसके होंगे, नहीं, भिन्न भिन्न होते हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ करना ये अपने ऊपर है। अब टकराएंगे संस्कार तो क्या होगा, और चलो अपने आप को सेफ करके आप बाहर चले जाओ, बात ही खत्म, टकराना थोड़ी है। तो टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना ये अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है टकराने का, तो ऐसा है संस्कार कोई कड़ा, तो बाबा कहते दूसरा ताली नहीं बजावे, उसका उसे टकराए नहीं, उसको रिटर्न नहीं करे, हाँ ताली नहीं बजावे, चाहे वो बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, चलो नहीं बदलता छोड़ दो ना उनको, उनके पीछे थोड़ी पड़ना, चाहे वो बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हरेक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा, अब अपना भी शीतल हो जाएगा। दूसरों का कोई ऐसा संस्कार है पर संभालो ना, वर्णन करने की भी क्या जरूरत, उसको नहीं कहा तो दूसरों को कहा तो भी तो टक्कर हो सकता, उसने तुमने मेरे लिए ऐसे क्यों कहा उसको। इसलिए बाबा कहते हैं समाने की शक्ति धारण करे तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज जैसे कल बताया वोटिंग का दिन है, मधुबन निवासी जिनका यहाँ पर वोटिंग लिस्ट में नाम है वो अवश्य जाएं, और मतदान करने से पूर्व साइट सिंह ऑफिस से स्लिप जरूर ले लें और अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाएं, जो भी आपके पास है, आधार कार्ड हो या को भी पैन कार्ड या जो कुछ भी, मतलब कुछ आधार आपका होना चाहिए, वो जरूर वहां दिखाना होगा, तो इसलिए आधार कार्ड जरूर ले जाएं और स्लिप लेने के लिए अवतार भाई के ऑफिस में जाएं और मतदान करने जाएं। ओम शांति।